वी लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर.
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु, जैसे प्रभु हम इस वचन को सुनते हैं प्रभु. प्रभु हमारे कानों को प्रभु आप खोले ताकि हम उस वचन को सुन सके जो आज हमारी ज़रूरत है प्रभु. धन्यवाद प्रभु जी आपका अभिषेक पिता प्रभु बोलने वाले पर आने पाए ताकि प्रभु हम प्रभु आपके वचन से वो प्रोफेसी को उस भविष्यवाणी के वचन को यहाँ पर सुन सके और बोल सके यीशु के नाम से.
So I was thinking of our Christian life.
और मैं सोच रहा था अपने मसीह जीवन के बारे में.
Many times the Christian life is compared to a race.
और कई बार मसीह जीवन को एक दौड़ के साथ उसकी तुलना की जाती है.
Paul says that in a race everybody runs but one receives the prize.
और पॉलुस इस प्रकार कहता है कि दौड़ में हर कोई दौड़ता है लेकिन एक ही को वो एक ही को इनाम मिलता है.
So run in such a way that you receive the prize.
और इस प्रकार आप दौड़े ताकि आप इनाम को प्राप्त करें.
So we know that in a marathon race it's a very long race.
और आप जानते हैं मैराथन की जो दौड़ होती है वो बहुत ही लंबी दौड़ होती है.
So it's not sufficient that one person starts the race or begins the race. That's important that I start the race. But the important thing is I press on.
और उस लंबी दौड़ को शुरुआत करना एक अच्छी बात है लेकिन उतना ही काफी नहीं, लेकिन उसको आगे बढ़कर समाप्त करना मुख्य बात है.
So if I am a person who has begun my Christian life.
और यदि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपना मसीह जीवन का आरंभ किया है.
I should be as much eager to go forward in the race.
और मुझे उतना ही उत्सुक रहना चाहिए उस दौड़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए.
That means I should not stop in between.
और मुझे बीच में कहीं रुकना नहीं है.
Maybe I have believed that Jesus has forgiven my sin.
और मैंने शायद ये विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ किया है.
And I have believed, trusted him for salvation.
और उस पर भरोसा किया उस उद्धार के लिए भी.
And I'm sure that he is the Lord of my life.
और मैं ये जानता हूँ निश्चित रूप से कि वो मेरे जीवन का परमेश्वर और प्रभु है.
But am I going forward every day?
लेकिन प्रतिदिन क्या मैं आगे बढ़ता हूँ?
Am I running forward or am I staying at the same place?
और क्या मैं एक ही जगह पर खड़ा हूँ या आगे की ओर बढ़ता हूँ?
So that is what God wants to remind that I want to run the race.
और परमेश्वर यही याद दिलाता है हमको कि हमको उस दौड़ में आगे दौड़ना है.
In Hebrews chapter 12,
इब्रानियों 12 अध्याय.
It says in the first verse, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us.
इब्रानियों 12 वचन 1. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े.
So the first part of the verse says that there is a great cloud of witnesses.
और पहला भाग वचन का कहता है कि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है.
So the cloud of witnesses is spoken about in the previous verse.
और उसके पहले वचन के अंदर भी ये गवाहों का बड़ा बादल उसके उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है.
In the chapter 11 it is talking about each of those witnesses.
और ये गवाहों का बड़े जो बादल जो है वो सारे गवाही जो है वो इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर लिखे गए हैं.
When it says therefore, that means we need to know what those witnesses are talking to us.
और 12 अध्याय जो शुरुआत होता है इस कारण, इसका मतलब ये गवाह जो है 11 अध्याय में किस चीज के लिए बात करते हैं.
So when we read about each of these people who ran the race in chapter 11.
और 11 अध्याय के अंदर इन सारे विश्वास के लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ा है.
We see some of those things which they had in their life which helped them to complete the, which they helped them to go forward in the race.
और हम देखते हैं कि उनके जीवन में ऐसा कुछ उनके जीवन में था कि उस दौड़ में उनको आगे दौड़ने के लिए उसने सहायता की है.
It says in 11 verse 1.
और इब्रानियों 11 वचन 1 में लिखा है.
Says that faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
और अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है.
That means they God had given them an assurance of the things which they hope for.
और इसका मतलब परमेश्वर ने उनको वो निश्चय दिया था उन बातों के लिए जिनकी आशा उन्होंने की थी.
That means God had given them a promise and they were assured of that promise.
और इसका मतलब कि परमेश्वर ने उनको एक प्रतिज्ञा दी थी जिसके लिए वो बहुत ही निश्चिंत थे.
And it is not all those promises which God had given, they had not yet been fulfilled in their lives.
और जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके जीवन में दी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी.
But they kept on trusting in God with their whole heart.
लेकिन अपने पूरे हृदय से उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना रखा.
If we read about Abraham,
और यदि हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं,
वी नो दैट गॉड हैड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही विल गेट अ सन,
और अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया कि उसको एक बेटा उत्पन्न होगा.
एंड व्हेन वी रीड व्हाट इज अब्राहम स्पीकिंग टू अस,
और हम जब इसको पढ़ते तो अब्राहम हमसे क्या बात करता है.
अब्राहम सेज दैट I did not have a son and God promised me that I will have a son.
और अब्राहम कहता है कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वायदा दिया कि मुझे एक संतान होगा.
And I believed in God that He will fulfill His promises.
और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो अपने प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करेगा.
Maybe after some years he thought that he has to do something to fulfill that promise.
और कुछ सालों के बाद उसने ये सोचा कि मुझे कुछ बातों को करना पड़ेगा ताकि उस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा हो सके.
That's why he had to go through Hagar and produce an Ishmael.
और इस कारण से, इस सोच के कारण वो हगार के पास गए, इश्माइल वहां पर उत्पन्न होता है.
But God said that this is not the promised son. I will give you a promised son through Sarah.
और परमेश्वर उससे कहता है अब्राहम से कि ये मेरे वाचा का संतान नहीं है, मैं सारा के द्वारा तुझे अपने प्रतिज्ञा का संतान दूंगा.
एंड फाइनली व्हेन ही इज 99 इयर्स ओल्ड,
और जब अंत में वो 99 साल का हो गया,
एंड आई विल रीड इन जेनेसिस,
उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति
जेनेसिस चैप्टर 17,
उत्पत्ति उसका 17 अध्याय.
एंड व्हेन अब्राहम वाज 99 इयर्स ओल्ड, The Lord appeared to Abraham and said to him.
और 17 अध्याय का पहला वचन, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर ये कहा.
So we can think about it that he is now 99 years old.
हम इस बारे में सोच के देखें कि 99 वर्ष का अब्राहम अब हो चुका है.
When Ishmael was born, he was about 86 or something.
और जब इस्माइल का जन्म हुआ तब 86 साल का लगभग वो था.
At that time also he had some energy left in him.
और शायद उस समय भी उसके अंदर कोई ताकत बची हुई थी.
But now he is 99.
बट अब वो 99 साल का हो गया.
There is no possibility that he can have a son.
अभी कोई संभावना नहीं बची कि उसको एक बच्चा हो सके.
एंड दैट टाइम गॉड सेज दैट यू हैव टू चेंज योर नेम फ्रॉम अब्राहम टू अब्राहम.
और तब उस समय परमेश्वर उसको अब्राहम से अब्राहम में परिवर्तित करता है उसके नाम को.
बिफोर गॉड ब्लेस्ड हिम विद अ सन, God asked him to change his name.
और इससे पहले कि परमेश्वर उसे एक बच्चे से आशीषित करता, परमेश्वर ने उसको अपने नाम बदलने के लिए कहा.
So it is not after we receive what God has promised that we believe.
और ये परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है उसके बाद, वो चीजें मिलने के बाद हम उस पर विश्वास नहीं करते.
We believe God's promises before we receive it.
और हम उस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की उसको मिलने से पहले ही उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं.
So the struggle with Abraham was not that how he can produce Isaac, how he has to struggle to produce Isaac, that was not God, Abraham's struggle.
और अब्राहम का ये संघर्ष ये नहीं था कि वो जो इसहाक जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी उसको कैसे वो उत्पन्न करेगा.
His struggle was to trust in God that he will give him even the promise which he has promised.
और उसका संघर्ष ये था परमेश्वर पर भरोसा रखना कि जिसने प्रतिज्ञा की थी वो उसको संतान देगा.
In Romans chapter 4,
और रोमियो उसका 4 अध्याय,
in Romans chapter 4 in verse 18 it says,
और 18 वचन में लिखा है,
it says in hope against hope he believed,
उसने निराशा में भी आशा रखा,
so that he might become the father of many nations,
और इससे कि उस वचन के अनुसार वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाए.
So according to what has been spoken, so shall your descendants be.
और इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा.
Without being weak in faith, he contemplated his own body now as good as dead, since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb.
और वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ.
In verse 20 it says, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God.
और 20 वचन, और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की.
And being fully assured that what God has promised, he was able to perform.
21 वचन, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है.
So when he was 99 years old, he understood that his body was as good as dead.
और जब वो 99 वर्ष का था तब उसने इसको समझ लिया कि उसका शरीर जो है वो पूरा मरा हुआ सा है.
He knew that in his own capacity he can never produce a son.
और उसने इसको जान लिया कि अपनी खुद की योग्यता और काबिलियत में वो कभी भी संतान को पैदा नहीं कर सकता.
So have I come to that place where I say that Lord, all those wonderful promises you have given me, victory over sin and partaking of divine nature and rejoicing always, having a life without anxiety, all those promises which are there, have I come to a place where I say, Lord, it is impossible for me to produce it?
और क्या मैं उस जीवन के पास आया हूँ कि जहां पर पाप के ऊपर विजय पाना या ऐसी सारी चीजों के ऊपर हम उसमें आए हैं क्या?
So have I realized that it is like Abraham that his in my efforts I am as good as dead.
और अब्राहम यहाँ पे कहता है कि उसके प्रयत्नों के अंदर वो पूरी तरह से एक मृतक से समान है.
I have to come to a place where I say, Lord, it is impossible. I have tried very hard, but I have failed, but I cannot do it on my own.
और वो कहता है कि प्रभु मैंने बड़ा कड़ी मेहनत यहाँ पर की है, प्रयत्नों को किया, लेकिन मैं इसमें असफल रहा हूँ, मैं अपने आप से इसे नहीं कर सकता.
That is when he said that even if it is impossible, I don't give up.
और यहाँ पर वो कहता है यहाँ तक कि वो असंभव है लेकिन मैं वहां पे हार नहीं मानूंगा.
बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू प्रॉमिस ऑफ गॉड आई कीप माई ट्रस्ट इन हिम.
और क्योंकि प्रतिज्ञा को सामने रखते हुए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता रहूंगा.
सो दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दीस विद दीस पीपल हु ट्रस्टेड इन गॉड.
और यही हम जो परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने भरोसा किया, इससे यही सीखते हैं.
दैट दे डिड नॉट ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटी.
और उन्होंने अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं किया.
बट दे लुक्ड at the God who is able to fulfill his promise.
और लेकिन वो परमेश्वर की ओर वो देखते रहे जो योग्य है उस प्रतिज्ञा और उस वायदे को पूरा करने के लिए.
Their circumstances may say that they are not able, or their circumstances may say that all those things which are there may prove that they are not able to do what was promised.
और उनकी सारी परिस्थितियां इस प्रकार कहती होगी कि वो सब कुछ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस प्रकार बनने या करने में वो असमर्थ है.
But they trusted in God.
लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा उन्होंने किया.
And God is pleased with the faith.
और परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा प्रसन्न हुआ.
That is why it says in Hebrews chapter 6.
और इब्रानियों 6 में.
Sorry, Hebrews 11:6.
इब्रानियों 11:6 में लिखा है.
It says, without faith, it is impossible to please Him.
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है.
So if I put all my efforts to live a godly life, God is not pleased if I don't trust in Him.
और अगर सारे प्रयत्नों को मैं करूँ एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए तो परमेश्वर शायद उससे प्रसन्न नहीं होगा.
God will not be pleased unless I put my trust in Him.
और परमेश्वर तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक कि मैं अपना भरोसा उसके ऊपर न लाऊं.
So that is what these people are talking to us.
और यही ये लोग यहाँ पर हमसे कहते हैं.
That we should trust in the Lord.
हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है.
That we should not trust in my own ability.
और मुझे अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा नहीं रखना है.
And then one more thing is they endured till they received the promise.
और यहाँ पर और एक चीज लिखी, जब तक कि वो वायदा उनको नहीं मिला तब तक वो उसके अंदर लगे रहे.
They did not say that, okay, one year I will see if God will fulfill, then I will say that, okay, it's not impossible, then I give up.
और ये ऐसा नहीं था एक साल तक मैं देखता हूँ कि ये पूरा होता है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो ये संभव नहीं है.
They endured in faith.
और वो विश्वास के अंदर लगातार बने रहे.
And it says, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us.
और वहाँ पे 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पापों को दूर करे.
And let us run with endurance the race that is set before us.
और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से उसे दौड़े.
Endurance is not just endurance is I am continuing in the race.
और धीरज क्या है? धीरज है कि उस दौड़ के अंदर मैं निरंतर लगातार बने रहता
हूँ. It does not mean I never fall in the race.
और इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ में कभी मैं गिरूंगा नहीं.
But even if I fall, I stand up and I keep running the race.
और यदि मैं गिर भी जाता हूँ तुरंत खड़े होकर तुरंत उस दौड़ को दौड़ने लगता हूँ.
And my eyes are on Jesus.
और मेरी आंखें जो यीशु की ओर लगी है.
Because he is able to complete, because this verse is talking about the sin which so easily entangles us.
और क्योंकि इस वचन में लिखा है कि वो पाप जो हमको बहुत ही उलझाने वाले पाप, हमें रोकने वाले पाप है.
There are some sins which cause us to fall every day.
और कोई पाप ऐसे पाप होते हैं जो हमें प्रतिदिन गिराते हैं.
Maybe that sin which for some people it might be discouragement.
और हो सकता है कई लोगों के लिए वो पाप जो है वो निराशा हो सकता है.
Some people it might be self-pity.
और कुछ लोगों के लिए वो खुद के ऊपर दया करने का पाप हो सकता है.
Some people it might be anger.
कुछ लोगों के लिए वो क्रोध या गुस्सा हो सकता है.
Whatever the sin is, it is easily ensnaring us.
और कोई भी वो पाप हो सकता है वो बहुत ही हमें उलझा रहा है, हमको रोक रहा है.
So what it says here is, I have to trust in like those people who trusted in God to fulfill that. I have to trust God that He will be able to deliver me from that sin.
और मुझे उन लोगों के समान यीशु परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर उन पापों से मुझे छुड़ाने के लिए वो योग्य है.
It's not that one day I trust and then next day I say that no, it's not possible.
और ये ऐसा नहीं कि एक दिन मैं कहता हूँ मैं भरोसा करता हूँ, दूसरे दिन वो संभव नहीं, ऐसा नहीं.
I keep on trusting in Him.
लेकिन मैं निरंतर उस पर भरोसा रखता हूँ.
In Hebrews chapter 3,
इब्रानियों 3 अध्याय,
in verse 12 it says,
उसका 12 वचन,
take care, brethren, that there not be in any of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God.
और हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए.
So there is a danger of unbelief in our hearts.
और यहाँ पर एक खतरा है हमारे हृदय के अंदर अविश्वास का.
So unbelief is a thing which, what is unbelief?
और अविश्वास क्या है?
It says in verse 10.
10 वचन में लिखा है.
They always go astray in their heart.
वो उनके मन में सदा भटकते रहते हैं.
And they did not know my ways.
और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना.
So they are going astray in their hearts.
और अपने खुद के हृदय में जो है वो भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं.
That means as soon as I go away from God, I have unbelief in my heart.
और इसका मतलब कि जितना मैं जब कभी परमेश्वर से दूर जाता हूँ, तब मेरे हृदय के अंदर अविश्वास होता है.
That's why it says that unbelieving heart that falls away from the living God.
और यहाँ पे लिखा है कि अविश्वास का मन जो है वो जीवते परमेश्वर से तुम्हें दूर हटा ले जाता है.
That means when I have unbelief in my heart, I am gone away from God.
इसका मतलब जब मेरे हृदय में अविश्वास आता है, तो मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ.
And it says that encourage one another day after day. As long as it is all today.
और 13 वचन में लिखा जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे.
Said none of you will be hardened by the deceitfulness of sin.
ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए.
For we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end.
और 14 वचन, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे.
So this is the assurance of faith.
और यही विश्वास का निश्चय है.
It is important that the assurance which we have when I received Jesus, I keep it firm till the end.
और ये बहुत ही मुख्य बात है कि जो निश्चय जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो निश्चय मुझे मिला, वो अंत तक उसको मैं बनाए रखूं.
That in between I do not have an unbelieving heart which goes away from God.
और कहीं ऐसा ना हो कि बीच में अविश्वास के कारण कहीं और मैं उस अविश्वास के कारण दूर चला जाऊं परमेश्वर से.
Maybe there are situations in my life which I don't understand.
और हो सकता है मेरे जीवन में ऐसे कुछ परिस्थितियां होगी जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं.
Maybe God has allowed some trials in my life.
और परमेश्वर ने कुछ परीक्षाओं को मेरे जीवन में अनुमति दी है.
But in those situations, Paul says that Peter says that is the testing of our faith.
और पत्रस इस बात में इन हालातों में कहता है कि परीक्षाओं के अंदर हम परखे जाते हैं.
That means my faith, whether it's a genuine faith or not, will be tested in the trials.
और जब उन परीक्षाओं के द्वारा हम परखे जाते हैं, तब हमारा विश्वास असली है या नहीं, उसकी परख होती है.
It can be possible that my faith is just in the head.
और हो सकता है, संभावना हो सकती है कि मेरा विश्वास जो है मैं केवल मेरे दिमाग में है.
The faith in the head will not save me.
और जो मेरा दिमाग के अंदर विश्वास है वो मेरा उद्धार नहीं कर सकता.
But when I go through trials,
और जब मैं उस परीक्षाओं से गुजरता हूँ,
faith which I used to say, which I had, और that will be tested.
और जो विश्वास की मैं बात करता हूँ मेरे अंदर जो है उसकी वो परख होती है.
We read in 1 Peter,
पहला पत्रस,
First Peter 1:7. It says the proof of your faith being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire.
और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है.
So my faith will be tested.
मतलब मेरा विश्वास जो है वो परखा जाएगा.
It is like gold. When we need some gold, we need to know whether it's a real gold or not.
और जब हम सोना कहीं खरीदने जाते हैं, तो हम इसको जांचते हैं कि ये सही असली सोना है या नहीं.
So the faith which I say I have in Christ, it has to be tested to know whether it's real faith or not.
और जो विश्वास मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह पर है, तो उसको जांचा जाना चाहिए कि वो असली या परखा जाना चाहिए वो असली है या नहीं.
So that will be tested when I have trials in my life.
और जब परीक्षाएं आती तभी वो विश्वास परखा जाता है.
And when I have trials, God will also purify my faith.
और जब उस परीक्षाओं से मैं गुजरता हूँ, तो परमेश्वर मेरे विश्वास को और भी शुद्ध करता
है. That means all those things which I felt were faith, which are not faith, that will be removed from my life.
और ये सारी चीजें जो मुझे लगता था कि ये विश्वास है, वो सारी चीजों से वो मेरा जीवन से दूर हो जाता है.
And my faith will be purely trusting in God.
और मेरा जो विश्वास जो है वो पूरी तरह से यीशु मसीह पर भरोसा रखने के लिए शुद्ध होगा.
Like we know that gold is refined in fire.
और जैसे हम जानते हैं कि सोना जो है वो आग में ताया जाता है, उसमें शुद्ध किया जाता है.
So that is how God will refine us.
और उसी प्रकार परमेश्वर हमको भी शुद्ध करेगा.
So it is important that when God tests us, that we do not get discouraged.
और ये बहुत ही मुख्य बात है कि जब परमेश्वर हमको परखता है उस परीक्षा के द्वारा, तब हम निराश न हो.
It says in Hebrews chapter 10.
इब्रानियों 11 में लिखा है.
Hebrews 10.
इब्रानियों 10 अध्याय.
In verse 35.
उसका 35 वचन.
From 34 we'll read.
34.
For you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourself a better possession and a lasting one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward.
क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है.
So it says that you should, when it comes to trials in our lives,
और जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है,
I should not throw away the confidence I have in Christ.
और जब वो हियाव जो मेरा यीशु मसीह में है, उसको मुझे फेंकना नहीं है, दूर नहीं करना है.
That has great reward.
लेकिन उसका एक बड़ा प्रतिफल है.
So this is something like we say that if I work hard, I'll be rewarded.
और जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा.
God says here that if you place a confidence in me and you don't throw it away in midst of trials.
और जब परीक्षाओं के बीच में यदि तू मेरे ऊपर विश्वास रखेगा और उसको छोड़ेगा नहीं,
it has a great reward.
तो उसका भी एक बड़ा प्रतिफल होगा.
And the reward is that God will change my character.
और वो प्रतिफल क्या है कि वो मेरे चरित्र को बदलेगा.
In James it says that the testing of a faith produces patience.
और याकूब के अंदर लिखा है कि जब हमारा विश्वास परखा जाता है तब हमारे अंदर वो धीरज को उत्पन्न करता है.
और it produces that endurance that is required.
वो धीरज और सहनशीलता को जिसकी जरूरत है उसको वो पैदा करता है.
And that when that patience has its perfect work.
और जब वो धीरज अपना आप संपूर्ण कार्य कर लेता है,
it will transform my character.
और उससे मेरा चरित्र पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा.
So this is the way which God has kept for us.
और यही एक मार्ग है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है.
That in the midst of the trials, God wants to cleanse us.
और परीक्षाओं के मध्य में परमेश्वर हमको शुद्ध करना चाहता है.
It is not that I just pray, Lord, I want to become like Jesus.
और खाली केवल इतना प्रार्थना करना ही काफी नहीं कि प्रभु मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ.
God wants to make that nature in us by in the midst of trials.
और उन परीक्षाओं के मध्य से लेकर जाकर ही परमेश्वर हमारे अंदर ये उत्पन्न करता है.
It says in verse 36.
और 36 वचन में लिखा है,
that you have need of endurance.
क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है.
So that when you have done the will of God, you may receive what was promised.
ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ.
So there is just you believe. And then it says you have a need of endurance.
और वहाँ पे लिखा है कि तुम विश्वास करना है, फिर तुम्हें धीरज की आवश्यकता है.
That means from the time God has promised to receive that promise, there is a period where I need to wait with endurance.
और ये जब परमेश्वर ने वायदा किया और जब वो वायदा मिलता है, उसके बीच का जो समय, उसके अंदर परमेश्वर चाहता है कि मैं धीरज मेरे मुझ में उत्पन्न हो.
That endurance means I wait in faith.
और वो धीरज क्या है कि मैं परमेश्वर के अंदर एक विश्वास के साथ में उसका उसकी राह देखता हूँ.
That means I have a faith in my heart and I don't keep on being at unrest or worried that whether it will happen or not.
और मेरे इसका मतलब ये है कि मेरे हृदय के अंदर विश्वास है और मैं चिंता नहीं करता कि ये होगा या नहीं होगा. मेरे अंदर विश्राम है.
For this purpose it says in Hebrews 3.
इसी कारण इब्रानियों 3 अध्याय में कहता है,
in verse 13.
13 वचन में,
encourage one another day after day.
और यहाँ पे लिखा है कि प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो.
What we need to encourage is none of us will have that unbelieving heart.
और हमें प्रोत्साहित क्या करना है कि हमारे में से किसी के अंदर भी अविश्वासी मन न हो.
That unbelief which captures us, that we cannot see anything, we become blind, that unbelief should not capture us.
और वो अविश्वास जो हमको पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है, तब हम पूरे अंधे होकर कुछ भी देख नहीं पाते हैं.
That unbelief which causes us to distrust God and be depressed all the time.
और वो अविश्वास जो हमारे अंदर परमेश्वर पर भरोसा नहीं करवाता और हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं.
To overcome that, we need to encourage one another.
और उस पर विजय पाने के लिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है.
And it also says that we have to confess the words of faith.
और वहाँ पे और भी लिखा है कि हमें विश्वास के वचनों को कबूल करना है.
It says in Hebrews 10:23.
इब्रानियों 10:23 में लिखा है,
it says, let us hold fast the confession of our hope without wavering.
आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे.
That means I have to keep confessing the words of faith.
और इसका मतलब जो विश्वास के जो वचन है उसको मुझे नित्य उसको मुझे अंगीकार करना है या कबूल करते रहना है.
What I confess with my mouth, that takes a lot of importance in my heart.
और जो मैं अपने मुख से जो चीजों को अंगीकार करता हूँ या कबूल करता हूँ, वो मेरे हृदय में उन चीजों का बड़ा महत्व है.
It says in Romans chapter Romans chapter 10.
रोमियो 10 अध्याय.
And verse 10.
उसका 10 वचन.
It says, with the heart a person believes resulting in righteousness.
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
एंड विद द माउथ ही कन्फेसेस रिजल्टिंग इन सैल्वेशन
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है
दैट मींस इन द माउथ व्हिच आई कन्फेस दैट विल रिजल्ट इन माय सैल्वेशन
और इसका मतलब यह है कि जो मुंह से अंगीकार करूंगा वो मेरे उद्धार में परिवर्तित होगा
सो एज सून एज आई फील दैट there is a discouragement or I should keep confessing the words of faith
aur jab kabhi mujhe lagta hai ki main nirash ho raha hu tabhi turant mujhe vishwas ke jo vachan hai wo mujhe turant wahan par bolna hai ya kabul karna hai
that means when I fall into sin I should immediately get up and say that god is able to deliver me
aur jab kabhi main paap mein girta hu turant mujhe wahan se bahar nikal kar angikar karna hai ki prabhu yogya hai mujhe is paap se chhudane ke liye
whenever I feel that things are going against me I should confess that all things work together for my good
aur jab kabhi cheeze mere virodh mein ban rahi hai tabhi mujhe kabul karna hai ki sari cheeze mere liye bhalai ke liye utpann kar rahi hai
it is a fight of faith
aur ye vishwas ke dwara hai
we should fight the fight of faith
aur mujhe vishwas ki kushti ko ladna hai
not give opportunity to the devil to cause unbelief in our hearts
aur shaitan ko avsar nahi dena hai taki mere hriday ke andar avishwas ko wo paida kar sake
then it says let us run with endurance
aur fir uske baad wo kehta hai ki aaiye us daud ko dheeraj ke sath daude
fixing our eyes on jesus
aur apni aankhon ko parmeshwar ki aur yeshu ki aur lagate hue
the author and finisher of our faith
aur jo hamare vishwas ka karta aur siddh karne wala hai
so what is who is we see all these witnesses
aur jab hum sare gawahon ko aas paas dekhte hain
but finally our eyes are on our jesus who has run the race before us
aur lekin hum unki ant mein aankhein jo yeshu ki aur hai jo unke pehle us daud ko दौड़ चुका है
एंड ही इज द ऑथर ही इज द वन हु स्टार्टेड दिस वर्क
और वही उस विश्वास का करता है उसने उस कार्य का आरंभ किया है
एंड ही इज द वन हु इज गोइंग टू कंप्लीट द रेस
और वही उस दौड़ को पूरा करेगा
सो हैव आई फिक्स्ड माय आईज ऑन हिम
और क्या मैंने अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाया है
that anything in my life which has to be completed he will complete it
aur agar aisi koi bhi cheez hai jo agar mere jeevan mein usko sampurna hona hai to wo parmeshwar use sampurna karega
and we also fix our eyes because he is our example
aur hum usliye bhi uske upar aankhein lagate hain kyunki wo hamara udaharan hai
because he has come to this earth exactly like us
aur wo is sansar ke hamare saman hi wo is sansar mein manushya bankar aaya
in hebrews 2
ibraniyon 2 adhyay
verse 17
17 vachan
it says that he had made like his brethren in all things
is karan usko chahiye tha ki sab baaton mein apne bhaiyon ke saman bane
so that he might become a merciful and faithful high priest
aur jisse woh un baaton mein jo parmeshwar ke sambandh mein ek dayalu vishwasiyon ke mahayajak bane
in things pertaining to god to make propitiation for the sins of the people
aur sab baaton mein jisse woh un baaton mein parmeshwar se sambandhit rakhti hai पापों के लिए प्रायश्चित कर सके
सो ही मेड ही वाज मेड लाइक मी इन एवरीथिंग
वो मेरे ही समान हर चीजों के अंदर मेरे समान वो बना
इन वर्स चैप्टर 14
और इब्रानियों 14 अध्याय
एंड वर्स 15 इट सेज ही वाज टेम्प्टेड एट ऑल पॉइंट्स एज वी आर 4:15 सर
4:14 के अंदर लिखा है कि वो हर हमारे समान ही हर रीति से वो परखा गया
सो व्हेन आई एम फेसिंग ट्रायल्स एंड वेरी डिफिकल्टीज इन माय लाइफ
और जब कभी मैं परीक्षाओं का या परीक्षणों का सामना मेरे जीवन में करता हूँ
वी मे से दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स मी
और हम सोच सकते हैं कि कोई मुझे समझता नहीं है
नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू
और कोई समझ नहीं पाता कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ
आई एम द ओनली वन हैविंग दिस प्रॉब्लम इन माय लाइफ
और मेरे जीवन में मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं हैं
बट दैट इज नॉट ट्रू
लेकिन ऐसा ये सही नहीं है
इट सेज दैट इन 15:15
और 15 वचन में इस प्रकार
लिखा है he was tempted at all things as I am
और वरन वो सब बातों में मैं हमारे समान ही परखा गया
and he can sympathize with my weaknesses
और वो मेरी जो निर्बलता है उसके अंदर वो मुझे सहायता कर सकता
है that means he can understand exactly what I'm going through
इसका मतलब ये है कि जैसा मैं गुजर रहा हूँ वो मुझे सही रीति से समझ सकता है
because at the same point he was tempted
क्योंकि उसी प्रकार से वो भी उसकी परीक्षा हुई थी
this is a great comfort for us
और ये बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन हमारे लिए है
in second first peter I think
pehla patras
first peter chapter 5
pehla patras 5 adhyay
and verse 9
vachan 9
we'll read from 8
8 se padhenge
be of sober spirit be on the alert your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour but resist him firm in your faith knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by a brethren who are in the world.
और सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं.
So Satan here is pictured as a lion roaring around.
और यहाँ पे शैतान को गर्जने वाले सिंह के समानता में दिखाया गया है.
And it says here, resist him firm in your faith.
और विश्वास में दृढ़ होकर फिर उसका सामना करने के लिए कहा गया है.
That means Satan is trying to steal my or cause unbelief in my heart.
और इसका मतलब यह है कि शैतान मेरे हृदय के अंदर अविश्वास को पैदा करने की कोशिश कर रहा है.
And there is also one thing which is mentioned here, that knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by a brethren who are in the world.
और विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं.
So there are many people in the world who are our brothers.
और संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भाई और बहन हैं संसार में.
And they are experiencing the same suffering that we are experiencing.
और जो दुख से हम गुजर रहे उन दुखों का सामना वो भी कर रहे हैं.
So we have to know that because Satan says that you are the only one.
वो हमको जानना है क्योंकि शैतान हमको कई बार दिखाता है कि आप इस समस्या का सामना कर
रहे हो. Nobody else is having this suffering.
और कोई भी और इस समस्या का सामना नहीं कर रहा
है. But that is a lie of the devil.
और ये शैतान का झूठ है.
And that is why it says resist him knowing that the same suffering is experienced by the brethren in the world.
और यही उसका सामना इस प्रकार करना है तुम्हारे क्योंकि ये जानकर जो भाई है संसार में ऐसे ही दुख उठा रहे हैं.
Then it says that after we have suffered a little while,
और उसके बाद वो कहते हैं कि जब तुमने थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद,
God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ,
और वो अनुग्रह का जो परमेश्वर जो है जिसने अपनी महिमा अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया है,
will himself perfect, confirm and strengthen and establish you,
और वही हमें सिद्ध करेगा और स्थिर और बलवंत करेगा.
Here it says that God is the God of all grace.
और यहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता.
That means whatever grace I require in that situation, God will give me.
और इसका मतलब उन हालातों के अंदर जो भी अनुग्रह की मुझे जरूरत है परमेश्वर मुझे वो देगा.
He is the God of all grace.
और वो सारे अनुग्रह का दाता या परमेश्वर है.
And he has called me to his eternal glory in Christ.
और उसने मुझे मसीह यीशु में अनंत महिमा के लिए बुलाया है.
That means the same nature of Christ he is able to perform in my life.
और इसका मतलब वो वही स्वभाव यीशु मसीह का मेरे जीवन में लाने के लिए वो योग्य है.
He himself will perfect the work he started.
और क्योंकि उस कार्य को वही पूरा करेगा जिसकी शुरुआत उसने की है.
So that is why we should not go back in unbelief.
और इसलिए हमें पीछे विश्वास में नहीं मुड़ना है.
So in verse chapter 10 verse 38 it says.
और इब्रानियों 10:38 में लिखा है.
That my righteous one shall live by faith.
और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा.
And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him.
और यदि वो पीछे हट जाए तभी मेरा प्राण उससे प्रसन्न न होगा.
So God is not pleased if I go back.
और जब मैं अगर पीछे हट जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा.
It does not say that God is not pleased if I fall into sin.
और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि अगर मैं पाप में गिर जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा.
Even if I fall into sin, if I rise up and I confess the words of faith, God is still pleased with me.
और यहाँ तक कि अगर मैं गिर जाता हूँ उठकर मेरे पापों को मान लेता हूँ फिर तब परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रसन्न है.
Because God is pleased with the confession of faith which we make.
क्योंकि विश्वास का जो कबूलात जो मैंने की है जो अंगीकार किया उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है.
Even if I fall 100 times, still I rise up and I confess the words of faith, God is pleased with me.
और यहाँ तक कि 100 बार में मैं गिरता हूँ वहां से उठकर अंगीकार करता हूं तब परमेश्वर उन विश्वास के अंगीकार के द्वारा प्रसन्न होता है.
Because the righteous man is fighting against sin.
क्योंकि धर्मी जन जो है वो पाप के विरोध में वो अपनी कुश्ती को लड़ रहा है.
He will not give up.
और वहां पर वो हार नहीं मानेगा.
He will keep on fighting.
वो निरंतर वो उस लड़ाई को लड़ता रहेगा.
In Hebrews 12:4 it says,
इब्रानियों 12:4 में लिखा है,
you are not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin.
और तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो.
This word encourage me.
और ये वचन मुझको प्रोत्साहित करता है.
That means even if I die, I have to die confessing that I will fight against sin.
और यहाँ तक कि मुझे मरना पड़े लेकिन फिर भी उस पाप के विरोध में अंगीकार करते हुए मैं मरूंगा.
I will not confess that oh the sin is too powerful.
और यहाँ तक मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अरे ये पाप तो बहुत सामर्थ्य या बलवान है.
Even if after 10 years I die also I will still be confessing that God is able to give me the victory.
और यहाँ तक 10 साल के बाद अगर मेरी मृत्यु भी होती लेकिन फिर भी मैं यही अंगीकार करूंगा कि परमेश्वर मुझे इस पाप से विजय देने के लिए योग्य है.
It says here that you're not yet shed your blood, or you're not yet died yet.
और यहाँ तक कि तुमने पाप से लड़ते हुए तुम मरे नहीं हो अपना लहू नहीं बहाया तुमने.
That means still the death till our death we keep confessing the words of faith.
और इसका मतलब कि हमारे मृत्यु के दिन तक हम उस विश्वास के वचनों का अंगीकार करते रहते हैं.
We never glorify the devil saying that a sin is too powerful.
और हम कभी भी शैतान को महिमावंत नहीं करते ये कहते हुए कि पाप बड़ा बलवान या बड़ा है.
We believe that our heavenly father speaks the truth.
और हम ये विश्वास करते कि हमारा स्वर्गीय पिता सत्य बातें बोलता
है. And all his promises are true.
और उसकी सारी प्रतिज्ञाएं जो है वो सच है.
And in verse 39 it says,
और 39 में लिखा है,
that we are not of those who string back to destruction,
पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए,
but are of those who through faith to the who have faith to the persevering of the soul,
पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए.
So we are not of those who string back to destruction,
और पर हम पीछे हटने वालों में से नहीं कि हम नाश हो जाए.
So those who fall into sin, they are not the ones who are destroyed,
और जो पाप में गिर जाते हैं वे नाश नहीं होते.
But those who turn back and say, oh, I cannot do it, I give up and I go back, that is the people God says that you should not be among those people.
और जो पाप में गिर जाते और पीछे मुड़के देखते कि अब मैं यहाँ से उठ नहीं सकता, मैं पीछे नहीं जा सकता, उनसे वे लोग नाश हो जाएंगे, उनके बारे में लिखा है.
But we are of those who persevere.
लेकिन हम उनमें से हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें.
In our dictionary, the word quit should not be there.
और हमारे मसीह डिक्शनरी के अंदर जो है वो हार मानना शब्द नहीं होना चाहिए.
When we read in Ephesians the armor of God,
और एफिसी के अंदर जो शस्त्रों विश्वास के जो शस्त्र यहाँ पे लिखे गए उसके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ,
various armor to protect resembling the Roman soldiers. We can see that picture there.
और वहाँ पे युद्ध के दौरान जो रोमी जो सैनिक होते थे उनको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे ऐसे शस्त्रों को पहनने का चित्र वहाँ पर हम देख सकते हैं.
You may notice there is something to protect every part of our body except one area.
और एक 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 भाग को छोड़ के सारे उस शरीर के भाग को छुपाने या उसको सुरक्षित रहने के लिए शस्त्र है.
There is no armor to protect the back.
और यहाँ पर पीछे जो हमारा जो पीठ जो होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई शस्त्र वहाँ नहीं है.
That means turning back is not an option for a soldier.
और ऐसे इसका मतलब ये है कि एक सैनिक को पीछे मुड़कर जाना वहाँ पर उसके लिए कोई चुनाव नहीं है.
The moment you turn back, the enemy can send a shot or an arrow or anything on your back, and that is the end of your life.
और जिस क्षण आप पीछे मुड़ते हैं तो तुरंत वो जो शत्रु है आपको वो तीर से या किसी भी रीति से मारकर गिरा देगा, आपका अंत हो जाएगा.
That may be what God wants to teach us from that picture.
और यही चित्र से परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है.
There is nothing to protect our backside.
और कभी भी हमारे पीछे पीछे की जो पीठ है वहां पर सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं.
And we heard God is not pleased in those who are turning back.
और जैसे हमने सुना कि जो पीछे हट जाते परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है.
Bible says that a righteous may fall 7 times.
और बाइबल इस प्रकार कहता है कि धर्मी 7 बार गिर सकता है.
But still he will get up and run.
लेकिन फिर भी वो खड़ा होगा और उस दौड़ को दौड़ेगा.
That is the mark of a righteous man.
और यही धर्मी व्यक्ति का चिन्ह है.
Not one who claims that I never fall, I have never fallen.
और ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो कहता है कि मैं कभी गिरूंगा नहीं या कभी मैं गिरा नहीं.
But even if he falls, he get up, he repent, he continues. Race.
और यहाँ तक कि वो जब गिरता है उठ खड़ा होता है मन फिराता है और उस दौड़ को वो लगातार चालू रखता है.
And the key word we heard, the word endure.
और यहाँ पर एक चीज जो हमने मुख्य शब्द को सुना वो है कि धीरज को धरना.
That is very important in our life. It's good to meditate.
और ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही मुख्य बात है, इस पर मनन करना अच्छी बात है.
We all like life, you know, something around comfort.
और हम हमेशा उस आरामदायक जीवन को पसंद करते हैं.
Nobody like with a hardship.
और किसी भी वो संघर्ष या कठिनाइयों से भरा जीवन पसंद नहीं आता.
But it is often through hardships that God refines our character.
और अक्सर उन कठिनाइयों के द्वारा ही परमेश्वर हमारे चरित्र को शुद्ध करता है.
Something which one of my old and in my younger days, one of my mentors mentioned, I registered in my heart.
और मेरे जवानी के समय में कुछ मेरे जो मुझे मार्गदर्शन करने वाले जो लोग थे अभी भी वो उनकी बात मुझे याद आती मेरे मन में.
During a conversation, he just casually said this.
और जब बातचीत कर रहे थे मैंने ऐसे ही कहा उनसे,
बट दैट थॉट रियली कैप्टिवेटेड मी,
लेकिन उस विचार ने मेरे मन को बहुत ही जकड़ लिया।
व्हाट ही सेड इज ऑलवेज most of the time we have a choice,
aur unhone ye is prakar kaha ki hamesha hamare paas chunav hota hai,
we have two options to choose,
aur hamare paas do chunav hote chunne ke liye,
one will be a way of comfort of convenience,
aur pehla jo hota hai ki bahut hi aaramdayak cheeze ho jati hai, bahut hi sahuliyat ke sath cheeze hoti hai,
some shortcut, some bypassing something,
aur shortcut ho jata hai ya chote se koi aise raste le lena,
if you take the route probably we can preserve our skin,
और यहाँ पर अगर हम ऐसे रास्ते को लेते तो हमारी चमड़ी को शायद हम बचा सकते हैं।
But the other way is a way of hardship.
लेकिन दूसरा जो रास्ता जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है।
More difficult obstacles.
और वहाँ पे बहुत सारे अवरोध है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उसमें है।
It is hard, is not easy.
और वो बहुत ही कठिन है, वो आसान नहीं है।
So he was saying, always this choice will come in front of us.
और हमेशा हमारे सामने ये दो चुनाव रहेंगे।
So what you mentioned is, if you willingly choose that way of hardship, it's likely to refine your character.
और यदि आप जानकर उस बड़े जो कठिनाइयों से भरा हुआ चुनाव जो उसको जो चुनते हैं तो आप अपने चरित्र को शुद्ध करने का चुनाव करते हैं।
इफ यू चूज दैट शॉर्टकट वे और द इजी वे, इट इज लाइक इट यू विल बिकम ए स्लॉपी कैशुअल पर्सन।
और यदि आप वो शॉर्टकट जो है वो आसान तरीका उसको चुनते हैं तो बहुत ही आप आलसी या हल्की सी चीजों को लेने वाले बन जाएंगे।
विद नो डेप्थ ऑफ कैरेक्टर,
आपके चरित्र के अंदर कोई भी ऐसी खूबी या उसके अंदर गहराई नहीं होगी।
We read in James chapter 5.
और याकूब उसका पांच अध्याय में हम पढ़ते हैं।
Verse 11.
उसका 11 वचन।
We count those blessed who endured.
देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं।
See that expression. We count those blessed who endured.
देखे यहाँ पर कहता है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं।
And it continues. We have heard of the endurance of Job.
और तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है।
So what is the meaning of Job's endurance?
और अय्यूब के धीरज का मतलब क्या होता है?
Even when we had one after the other, like a sequence of troubles.
और यहाँ तक कि जो हमारे जीवन के अंदर एक के बाद कठिनाइयों का एक एक बड़ा सा एक लंबा एक दौर रहता है।
It was not just one incident or some hardship.
और केवल एक घटना नहीं कठिनाई की कोई।
But one after the other.
और एक के बाद ऐसी कठिनाइयाँ।
Disaster struck him.
और बहुत सारे ऐसे विनाश की बातें होती रहती हैं।
Every day he endured.
लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि हम धीरज को धरते हैं।
Because he knew God.
क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था।
And it's written, you have heard the endurance of Job and have seen the outcome of Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and mercy.
और तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतीत हुआ उससे भी तुमने उसको देखा जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है।
And so Job had a long period of passing through that hardships.
और अय्यूब के जिनमें एक लंबा समय था उन कठिनाइयों से गुजरने का।
So even when his own wife challenged him to give up, he did not give up.
और यहाँ तक कि उसकी खुद की पत्नी ने उसको चुनौती दिया कि वो वहाँ पे हार मान जाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
He endured.
उसने वहाँ धीरज को धरा।
We know that's what is written, and you know he speaks about you have seen the outcome.
और यहाँ पे लिखा है कि तुमने उसके प्रतिफल को उसके परिणाम को देखा है।
See, he did not give up and he continued, he endured till the end.
और वहाँ पे उसने हार नहीं मानी, लेकिन वो धीरज को धर के अंत तक वो बना रहा उस धीरज में।
So we can see that end, read the last chapter of Job.
और हम अंतिम याकूब के पुस्तक के अध्याय में हम पढ़ते हैं, देखते हैं।
That endurance was not a waste.
और वो धीरज जो उसने धरा वो व्यर्थ नहीं गया।
And it's recorded there. I can just read that verse.
और उस वचन को हम पढ़ेंगे।
Job chapter.
अय्यूब उसका
42.
42 अध्याय।
Yeah. Verse 12.
उसका 12 वचन।
The Lord blessed the latter days of Job more than his beginnings.
और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष उसको दी.
सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ इट.
और उसकी सुंदरता यहाँ पर यह है.
सो ही केम आउट एज अ मोर ग्लोरियस पर्सन देन व्हेन ही स्टार्टेड.
और जब उसने शुरुआत की पहले से बेहतर वो एक महिमावंत व्यक्ति बनकर उस बात में वो परिणाम को देखते हैं.
लैटर डेज ऑफ जो वाज फार मोर ग्लोरियस देन द अर्लियर डेज.
और अय्यूब के बाद के दिन जो थे उसके पहले दिनों से बहुत ही महिमामय दिन वो थे.
एंड इन बिटवीन ही एंड्यूर्ड द डिफिकल्टीज गॉड अलाउड इन हिज लाइफ.
लेकिन उस समय के दौरान बीच के अंदर दौरान उसने परमेश्वर ने अनुमति जो तकलीफों की दी उन कठिनाइयों को उसने धीरज से सहा.
दिस समथिंग वी हैव टू कीप इन आवर हार्ट एज वी रीड इन हिब्रूज
और इब्रानियों 12 में जैसे हमने पढ़ा ये हमारे हृदय में इसको हमको रखना है.
अबाउट जीसस
यीशु मसीह के बारे में.
सो वी रीड इन जेम्स 5 वर्स व्हेन यू सी दैट वर्स 11
और याकूब 5 के अंदर हम देखते हैं याकूब 5
यू द आउटकम ऑफ द लॉर्ड्स डीलिंग्स दैट द लॉर्ड इज फुल ऑफ कंपैशन एंड मर्सीफुल.
और यहाँ पे देखता है कि उसका प्रतिफल उसको हमने जान लिया जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है.
इंस्टेड ऑफ गिविंग अ हाफवे वी हैव टू वेट फॉर दैट गुड आउटकम.
और यहाँ तक बीच में हार मानने के बजाय हमको वो उत्तम परिणाम जो प्रतिफल मिलने वाला उसकी राह देखना है.
एंड दैट आउटकम व्हेन दैट आउटकम कम वी विल ऑलवेज बी कन्विंस्ड दैट लॉर्ड इज कंपैशनेट एंड मर्सीफुल.
और वो अंतिम परिणाम और प्रतिफल जब हमको मिलेगा तो वो हमको याद दिलाने वाला होगा कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दया है.
एंड ही इज इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग.
और वो सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता
है. बाइबल सेज दैट गॉड विल नेवर अलाउ एवर ए ट्रबल और डिफिकल्टी और टेस्ट बियॉन्ड व्हाट वी आर एबल टू बेयर.
और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कभी भी ऐसी कोई तकलीफ या परीक्षा या परीक्षण हमारे जीवन में हमारे सहने से बाहर क्षमता से वो नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा.
But in every situation, he will open a way of escape.
लेकिन हर हालात में वो एक निकास का हमारे लिए एक मार्ग तैयार करेगा.
We only need to submit ourselves under the authority of God.
और केवल हमको परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में हमको समर्पित अपने आप को करना है.
We read in James 1 also.
और याकूब एक अध्याय के अंदर भी हम पढ़ते हैं
जेम्स चैप्टर 1:3-4
उसका 3-4 वचन.
I'll read it 2-4. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect work.
और वहां लिखा है मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो.
सो इट्स रिटन दैट लेट अलाउ एंड्योरेंस डू इट्स परफेक्ट वर्क.
और चार वचन में लिखा है कि पर धीरज को अपना संपूर्ण काम जो है उसे करने दो.
दैट यू मे बी परफेक्ट एंड कंप्लीट लैकिंग नथिंग.
कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और किसी बात की घटी न रहे.
तो व्हाट इज द रूट फॉर अ लाइफ which is complete, perfect, and lacking nothing.
और इसका मतलब जो है कि हमारा जीवन जो संपूर्ण हो जाए, किसी बात सिद्ध हो जाए, किसी बात की घटी नहीं, उसका उसकी नींव क्या होनी चाहिए, क्या है?
Endurance.
वो है धीरज.
So if you are interested in character, we have to submit to the authority of God.
और यहाँ तक कि जब हम उस चरित्र के अंदर रुचि रखते हैं, तो हमें परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को समर्पण करना है.
And whatever measured difficult hardship God allows in our life.
और परमेश्वर ने जितनी भी कठिनाइयां या जितनी भी ऐसी परिस्थितियों को नाप के अनुसार हमारे जीवन में अनुमति दी है.
Humbling ourselves, if we are willing to endure through the grace God gives.
और अपने आप को नम्र करके परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया उसमें हम धीरज से उसको सहते हुए.
That will what will make us perfect.
और वही हमको सिद्ध बनाएगा.
And our latter days will be like that of Job.
और हमारे जो आने वाले दिन बाद के जो दिन होंगे वो अय्यूब के दिन के समान होंगे.
In second Timothy.
और दूसरे तिमोथियुस में हम पढ़ते हैं.
Chapter 2.
दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय.
Verse 3.
उसका 3 वचन.
Suffer harshly with me as a good soldier of Jesus Christ.
और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा.
In another word, the same word is endure hardship as a good soldier of Jesus Christ.
और यहाँ पे और वे मसीह यीशु की अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ तू सह या धीरज को धर.
This again a words which personally challenge me very often.
और बहुत अक्सर ये वचन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे चुनौती दिया है बहुत बार.
If we are saying that we are a soldier of Jesus Christ, are we willing to endure hardship?
और यदि हम कहते कि हम यीशु मसीह की योद्धा है तो क्या हम उस धीरज से उसको सहने के लिए क्या हम तैयार हैं?
And it speaks about someone about an athlete in verse 5.
और पांच वचन में लिखा है कि जो दौड़वीर जो दौड़ता है.
And verse 6 speaks about a hard-working farmer.
और छह वचन के अंदर जो एक किसान जो परिश्रम करने वाला किसान उसके बारे में कहता है.
Paul illustrates the need for enduring instead of giving up.
और इसका मतलब पौलुस जो यहाँ पर है वो धीरज के बारे में और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हम हार न माने.
May God help us.
और प्रभु हमारी सहायता करें.
Thank God for what we heard today.
और परमेश्वर धन्यवाद जिस बातों को हमने सुना आज.
There's one example of shrinking back. You know, like if you read the Old Testament, shrinking back.
हाँ, एक उदाहरण है कि हम पीछे मुड़ने के बारे में.
If you have seen about Sodom and Gomorrah, the thing given of Lot's wife.
और सोडोम और गोमोरा के बारे में जानते हैं, वहाँ पे लूत के पत्नी के बारे में.
With Sodom and God was going to destroy Sodom and Gomorrah, it was told particularly like you all run from here and don't look back, go to the mountains. If you look back, you will, the Sodom and Gomorrah is going to be destroyed, plus you will also be destroyed.
और वहाँ पे आज्ञा दिया गया था कि आपको वहाँ से निकलना है, पीछे नहीं मुड़ना है, और अगर आप पीछे दोखेगे तो आपको भी वो नष्ट को सहना पड़ेगा.
But it comes as the Bible says, it says over that Lot's wife looked back and she turned into a pillar of salt or a block of salt.
और फिर हम लूत के पत्नी के बारे में देखते हैं कि वो भागती है लेकिन आगे जाके पीछे मुड़ती है और वो नमक का एक पुतला बन जाती है.
So I was thinking, why she looked back?
और मैं सोच रहा था क्यों उसने पीछे मुड़ के देखा.
My Lord has a lot of property over there in Sodom and Gomorrah. Lord had a lot of property over there in Sodom and Gomorrah. He got a lot of things over there.
और लूट के बारे में देखते हैं कि वो बहुत सा वहाँ पे संपत्ति वहाँ पे सोडोम और गोमोरा में था.
A big house and everything they had over there.
और वहाँ पे सब कुछ था, घर था, बड़ा घर था.
But when God was going to start, they had to leave everything behind and run for their lives.
और वहाँ पे ऐसा बोला गया था सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन के लिए आगे भागना है.
You know, and but still that attachment was there. You know, that I am losing everything behind.
और एक लगाव था कि मैं सब कुछ खो रहा हूँ और उसे पीछे छोड़ के जाना है मुझे.
And you know, when she looked back and she was that life had gone through her, it became like salt. She became
और फिर,
salt.
फिर हम देखते हैं कि लूत के पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो जीवन था वो निकल गया और वो एक नमक के पुतले बन गई.
God also gives us many words of life. He teaches us many things. But do I go forward? Or do I look back?
और परमेश्वर काफी कुछ हमें सिखाता है और दिखाता भी है. हम जब इस बातों को जानते हैं क्या हम आगे जाते हैं या पीछे मुड़ते हैं.
And when God he gives, he says, see, there are two things. One is when we see about when a person is living, we say he is alive. We call him by his name. But once he dies, we say it's a body. When a person is alive, we call him by his name. But when a person dies, we say the body. You know, we don't see that person.
हम दो बातें हैं. एक है कि जब एक 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 व्यक्ति जो जीवित रहता है तो उसको नाम से पुकारते हैं, जब वो मर जाते हैं तो हम उसको शरीर ऐसे कह के बुलाते हैं.
Same way when we listen to God and we accept his, you know, his corrections, the things that he speaks, we get new life, we are alive again.
और उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम उसे अपनाते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है, हमें एक जीवन सा हमें मिलता है.
And when you stop listening to, we just are dead, like salt.
और जब हम उस चीजों को हम नहीं सुनते हैं और उसको सुनने के लिए हम इनकार करते हैं तो हम नमक का पुतला बन जाते हैं.
The second example given in the Bible, you know, it says about, you know, we have written read about it, it says it's about a merchant and a farmer. The merchant finds a fine pearl and he sells everything that he has to get that pearl.
और एक व्यापारी के बारे में बताया गया है नया नियम में कि वो व्यापारी क्या करता है, सब कुछ वो बेच देता है उस मोती को पाने के लिए.
And the farmer, he sells everything to buy land where that treasure is hidden.
और वो एक जो किसान है उसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो भी अपना पूरा जमीन को बेच देता है उस उसको खरीदने के लिए.
So I have to really find a treasure and that God has that treasure in my life.
और मुझे उस संपत्ति को खोजना है जो परमेश्वर है और वो मेरा जीवन का एक संपत्ति है.
That finest pearl I should find it in my heart, my life. Then no, my life will change.
और मुझे उस मोती को खोज करना है जो मेरा जीवन को बदलेगा और मेरे जीवन उससे एक नयापन में पाऊंगा.
So you know, as thinking like comparing, you compare Lot's wife is, they are running to, like God has told them to go away. They are running to save their lives.
और हम देखते हैं कि लोत के जीवन में वो लोग भाग रहे हैं उनके जीवन को बचाने के लिए वो आगे जा रहे हैं.
This example, these people are selling what they have to gain a new life.
और हम जब इस किसान और उस व्यापारी के बारे में देखते हैं कि वो लोग सब कुछ बेचते हैं कि एक नया जीवन को पाने के लिए.
So you know, I should compare and see, God, am I really, you know, I love you so much that giving up everything becomes so easy, or it's hard to give things up?
और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मुझे ये देखना है कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ क्या, या मेरे लिए मुश्किल है?
God will show us, you know, like Allah can also help us to have a victorious life.
और परमेश्वर हमारे सहायता करेगा कि एक विजयी जीवन जीने के लिए.
And there's one more thing, you know, like singing. See, many people who it's given a Bible, the people who don't listen and have fallen to sin, and you know, like they go to hell and they are burning in fire and all that, you know.
हम उदाहरण देखते हैं, काफी लोग जो है वो लोग जो है पाप करते हैं और पाप में गिर जाते हैं और नर्क में जाते हैं, वहां पे वो लोग बहुत तड़पते हैं और रोते हैं.
Jesus also says there is gnashing and grinding of teeth, you know, like they are suffering a lot over there.
और वहां पे हम देखते हैं कि नरक में है, काफी कुछ दुख वहां पे है.
But thinking like this, those people would be thinking, wish I could go back and correct myself.
और वो लोग सोचते हुए होंगे कि मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वापस जाकर के जो चीजें मैं गलत किया है उसको मैं ठीक करके आ जाऊं.
That I wouldn't land up here.
ताकि मैं इस जगह में वापस ना आऊं.
But no, they are dead. But we are alive. We can change our lives through Christ.
वो लोग जो है वो मर गए हैं और नरक में हैं, लेकिन हम जीवित हैं. हम लोग हमारे जीवन को अभी बदल सकते हैं.
We are alive. God can do His work in our life.
और हम जीवित हैं, परमेश्वर उसका कार्य हमारे जीवन में कर सकता है.
I really pray that God will help us, that we may be, you know, that His name be really glorified through us.
और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे सहायता करे कि उसका नाम हमारे द्वारा उसको महिमा मिले.
God bless us.
परमेश्वर हमें आशीष दे.
As we heard today about faith,
हम विश्वास के बारे में सुने.
We heard about without faith it is impossible to please God.
और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है.
So one way in which we can get faith in our lives.
और एक रास्ता है कि हमें वो विश्वास मिल सकता है हमारे जीवन में.
It's written in Romans 10:17.
और वो रोमियो का दस का सत्रह में
इट सेज, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट.
अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वो सुनने से विश्वास आता है और परमेश्वर का वचन को सुनने से हमें वो विश्वास मिलता है.
इफ वी सी हिब्रूज 11 दैट ब्रदर डैनी रेड अबाउट, हिब्रूज 11,
और जैसे कि हिब्रोनियो का 11 में भाई डैनी ने उसके बारे में बताया था.
Most of the men of God in that chapter are they get that faith when they hear God speaking to them.
और उनको विश्वास तब मिला जब परमेश्वर उनसे बातें किया.
So we know the extreme importance of listening to God. Even when I quote a Bible verse, it should be what I listen to God and then confess.
और कितना ही एक मुख्य बात है जब हम परमेश्वर को सुनते हैं या जब हम वचन से भी पढ़ते हैं, ये जानना है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है.
You can ask God, Lord, help me to, when I read the Bible also, let me listen, let that word come as if God is speaking to me.
और परमेश्वर से हम ये मांगे कि प्रभु, जब मैं वचन को भी पढ़ता हूँ, मुझे ऐसे लगे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं.
We must have experiences where when we are going through a trial, It's not when I just open the Bible. Sometimes the word of God just comes and it speaks to us. It speaks. It's a living word.
और कभी कभी जब हम मुश्किल से गुजरते हैं ऐसा नहीं कि हम वचन को खोलते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे ही अचानक सा वचन आता है और परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे अचानक सा बात करता है
एंड when God speaks that word that he speaks to us directly that remains in our hearts it goes into our hearts
और जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो वो हमारे हृदय के अंदर हमारा हृदय के अंदर जाता है और वो हमारे हृदय में बसा रहता है
While it is important to memorize verse but I need to ask God Lord let that word Come as life to me. Let it come as a life.
और जब हम वचन जो याद करते हैं, memory verse जो है, वो जो वचन हम याद करते हैं, वो हमारे लिए जीवन में एक हमारे जीवन के अंदर बसे रहे और वो हमारे लिए एक जीवन बने.
Then what happens is it's no longer in my head. It's a part of my heart. It's a part of my life.
क्योंकि वो जो वचन जो है, वो अभी दिमाग ही तक नहीं रहा लेकिन वो मेरे जीवन में बस गया है अभी वो मेरे हृदय के अंदर है
दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन आवर लाइव्स दैट द वर्ड ऑफ गॉड शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ इट बिकम्स लिविंग टू अस
और यही परमेश्वर चाहता है कि वचन जो है हमारे जीवन का एक भाग बने
इन हिब्रूज 4:12 वी नो अबाउट व्हाट वर्ड ऑफ गॉड व्हाट इट सेज देयर इट्स लिविंग एंड पावरफुल
और हिब्रू का 4 में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है वो शक्तिशाली है
एंड इट्स एबल टू जज बिटवीन द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ आवर हार्ट्स
और वो जो है न्याय करने के लिए तैयार है कि हृदय और हमारे विचार के बारे में
वर्ड ऑफ गॉड शुड नॉट बी कम एज इट शुड नॉट बी अ डेड रिटन वर्ड इट शुड बी लिविंग एंड पावरफुल इन आवर लाइफ्स
और जो वचन जो है वो मरा हुआ नहीं रहना चाहिए लेकिन वो हमारे जीवित और शक्तिशाली के रूप में बनना है
एंड व्हेन दैट वर्ड इज लिविंग एंड पावरफुल When I speak that word with that life, it will give life to others.
और जब वो वचन जो है मेरे अंदर जीवित और शक्ति से भरा रहता है वो जो है जब हम किसी से हम बात भी करता रहेगा वो उस सामर्थ को आगे प्रकट करेगा.
That is what God wants to do in our lives. That what we speak will give life. That life should come out. That it should not be a dead word that I speak.
और परमेश्वर यही चाहता है कि वो है वो जीवित को प्रकट करे और जब वो जो वचन जो है वो मृत्यु का वचन ना बने.
That is why it's very important to be connected to God and listen to Him what He's saying.
और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें हमेशा परमेश्वर के उस परमेश्वर के उस सहभागिता में और कनेक्शन में रहना जरूरी है कि क्या वो कह रहा है उसे सुनना है.
I don't know if Abraham would have had faith if God would have not only spoken once to him.
और मुझे नहीं लगता है कि अब्राहम के अंदर विश्वास होता अगर परमेश्वर उससे अगर नहीं बात करता.
Just once.
एक बार.
He had to speak constantly, and that word came as living to him. That's why he could live in that faith. Faith cannot come without we hearing God speaking to me.
और जो लगातार परमेश्वर से बातें किया और उस तरीके से उसके अंदर वो विश्वास और जागरूक होने लगा.
That is why when I go through any temptation or trial, I need to ask God, Lord, what do you want to speak to me through this?
और जब भी मैं एक परीक्षा से या कोई परीक्षा से गुजर रहा हूँ तो परमेश्वर से मांगना है कि क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं.
And God will not disappoint us. He will tell what is the specific why He has allowed this.
और तभी जाकर के परमेश्वर हमें बताएगा कि क्यों इस चीज का अनुमति उसने मेरे जीवन में दिया है.
We know about Job's friends. They said, "This was the reason. This was the reason." But God had to rebuke all the 3 friends of Job.
और हम देखते हैं कि आयुब के मित्र के बारे में कि वो किस तरीके से वो लोगों ने कारण को बताया है लेकिन परमेश्वर उसके बारे में अंत में बताया उसके बारे में.
So that means, but God had a purpose for Job's life when he allowed that trials.
लेकिन परमेश्वर का एक योजना था आयुब के जीवन में जब उसने उस चीजों को अनुमति दिया उसके जीवन में.
So I know there is a purpose for God's life when he allows something, some delays, some problems, some difficulties. Some unanswered prayers. There is a purpose for God in His life.
और हम जान एक 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 योजना रहता है परमेश्वर का जब कुछ वो चीजों का अनुमति देता है कुछ चीजें देरी से करता है और या कुछ परिश्रम को वो लाता है. परमेश्वर का एक योजना बढ़ाता है.
But I should not remain in that, Lord. I don't know, but I can ask God, Lord, reveal to me, Lord. What is it? I want to know that.
मुझे ऐसे स्थिति में नहीं रहना है कि मुझे कुछ पता नहीं लेकिन हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे उस चीज के बारे में प्रकट करना
and,
क्या है.
एंड वी नो दैट गॉड इज लिविंग एंड ही विल स्पीक टू अस.
और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है जीवित है हमसे बातें कर सकता है.
वी कैन ऑलवेज आस्क हिम टू स्पीक टू अदर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू maintain that connection with him and speaking and hearing him speak to us.
Aur hamesha hum ye mang sakte hain parmeshwar humse baatein kare aur hum usse bhagita mein uske sath us sambandh mein bana rahe ki hamesha uske vachan ko us vani ko hum sune.
That living relationship is very important.
Wo jo jeevit jo sangati jo hai wo bane rehna hai.
It is not just reading one chapter a day, that is good, but better than that is that living connection is there when I read the Bible.
Aur sirf ek 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 chapter padhna wo achhi baat hai, lekin hum us jeevit sambandh ke sath hum parmeshwar ke bana rehna wo bahut hi badi baat hai.
Sometimes when we are at home, we'll see that the partner is depressed, but God can give a word that will encourage that person.
Aur kabhi kabhi aisa ho sakta hai ki ghar mein jo patni hai wo udaas rahega, lekin kabhi aisa ho sakta hai ki parmeshwar vachan de sakta hai ki jisse wo utsah pa sakti hai.
So that is the work that the word of God can do.
Aur yahi jo karya jo hai ek parmeshwar ka vachan kar sakta hai.
That's why it's written, I believed what God spoke to me and I spoke that word.
और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जो किया, मुझे जो दिया है वचन, और वो वचन मैंने बताया.
That will help us to grow in this life, in this faith.
और ये जो है हमारे इस विश्वास के जीवन में सहायता कर सकती है और बढ़ाने में.
आमीन.
आमीन.
प्रभु का धन्यवाद जो वचन हमने सुने. जैसे डैनी भैया बता रहे थे कि विश्वास जो है और ये जो दौड़ है वो सिर्फ एक बार विश्वास करना नहीं है, बट हम इस दौड़ में कई बार गिरेंगे, और विश्वास है कि गिरने के बावजूद उठना और इस चीज़ को कन्फेस करना कि हाँ प्रभु मैं गिरी हूँ, पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे उठा सकते हैं. और मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही थी, और एक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ एक 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 खंडर की तरह होती जा रही है, और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं डाउन भी फील कर रही थी. और बट प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ वचन से जो प्रभु ने मुझे एनकरेज किया और एक विश्वास मेरे अंदर डाला कि ये परमेश्वर का काम है, कि परमेश्वर ही हमें स्थिर कर सकता है, दृढ़ कर सकता है, हमें उठा सकता है. तो वो वचन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी. यजकेल चैप्टर 36 वर्स 8. परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियाँ पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उनका लौट आना निकट है. देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे. तो यहाँ पर मैं अपने आप अपने नाम को रखकर कह सकती हूँ कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है और वो मुझ पर दया करेगा और मैं फिर जोती और बोए जाऊंगी. कि भले ही आज मेरी कंडीशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जो वीरान है, जो खंडर है प्रभु, आप उसे जोतेंगे और बोएंगे. और वर्स 11 सेकेंड पार्ट में लिखा है, मैं तुमको प्राचीन काल के समान बढ़ाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ. तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा. तो जब हम प्रभु में आए और जब हम प्रभु में नए थे, तो जो पहला सा जो लव गॉड के लिए था, जो प्योर डिवोशन जो था, यहाँ पे गॉड का प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें उस पहले के समान मैं तुम्हें बनाऊंगा और पहले से भी ज्यादा मैं तुम्हारी भलाई करूंगा. जैसे अय्यूब के लिए भी लिखा गया कि पहले से भी ज्यादा उसके साथ प्रभु ने भला किया, वैसे हमारे लाइफ में भी गॉड पहले से ज्यादा प्रभु हमारी मदद करेगा कि हम उसमें बढ़ सकें. ये हमारा काम नहीं है, बट डेफिनेटली ये परमेश्वर का ही काम है जो वो हम में करेगा. और वर्स 33 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे, और तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वे उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा, और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वो अदन की बारी से हो गया, और वह नगर जो खंडर और उजाड़ हो गया था और ढाए गए थे, वे गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं. तो और तब जो लोग जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी, वे जान लेंगी कि तुम यहोवा कि मुझ यहोवा ने ढाई हुए को फिर बनाया है और उजाड़ में पेड़ रोपे गए हैं, मुझ यहोवा ने ये कहा है और ऐसा ही करूंगा. तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कहते हैं कि उस खंडर को बसाने वाला खुद मैं नहीं हूँ, बट परमेश्वर है जो उस खंडर को बनाता है। और लिखा है कि मैं तुम्हें आदन की वाटिका बनाऊंगा, कि जहाँ पर परमेश्वर जैसे आदम और हवा के साथ फेलोशिप करने आता था, वैसे ही लॉर्ड हमारी लाइफ को ऐसा बनाएगा कि गॉड जहाँ पे हर दिन हमारे साथ फेलोशिप कर सकेंगे। और 31 वर्स में लिखा है कि इसराइल के घराने ने मुझसे ये विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए ऐसा करूँ। तो प्रभु सिर्फ ये चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और कहें कि प्रभु हाँ प्रभु आप हमें अदन की वाटिका बनाए, आप हमारे खंडरों को परमेश्वर फिर से बसाए और आप हमें सच में प्रभु आप में फलने और फूलने के लिए मदद करें। तो सच में ये केवल परमेश्वर का ही काम है कि जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। और जैसे हमने सीखा कि हमारे विश्वास का हमें अंगीकार करना है, उस विश्वास को थामे रहना है, चाहे हमारी आज कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, पर वहां से उठना है और कहना है कि प्रभु आप मुझे यहां से आगे बढ़ा सकते। तो मैं विश्वास करती हूँ कि सच में प्रभु हमारे खंडरों को एक अदन की वाटिका में बनाएगा, जहाँ जहाँ कोई कोई कुड़कुड़ाना नहीं होगा, पर प्रभु के लिए सिर्फ धन्यवाद और वो पहले जैसा प्रेम होगा। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर डैनी ने विश्वास के बारे में कहा, तो मैं ये कलीसिया में जब ये एंटर किया, जब भी बहुत संकट में थी, तो मेरे को ये वचन मिला है, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। यशया का 55 वचन 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर मुझे बदलना चाहता है और मुझे कहता है, मैं जब भी प्रे करता था, मेरे पीछे करने वाला सताने वाले बहुत थे ए टाइम पे, जब भी मैं ये कलीसिया में एंटर किया जब भी, मगर मैं परमेश्वर के चेतावनी से हटी नहीं। मेरे को एक गाना मिला था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस नो टर्निंग बैक। मैंने एक निश्चय किया परमेश्वर को कि मैं नहीं हटूंगी, तेरे पास से नहीं हटूंगी, तेरे पास ही रहेगी। और निर्गम का 15 का वचन 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। मैं विश्वास के बारे में कहती हूँ कि सच्ची परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और आज मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बहुत बुराई में थी, संकट में थी, क्या क्या प्रॉब्लम बहुत आया, उनमें से परमेश्वर ने मेरा हृदय देख के मेरे को चंगा किया है, मैंने उसके नियमों पे दृष्टि लगाई है और आज मैं इधर खड़ी है। 3 पत्रस का 9 का वचन, प्रभु अपनी प्रतीक्षा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यही कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर मेरा नहीं नाश करना नहीं चाहता है, मुझे पश्चाताप करने के लिए कहता है कि देर मत करो, मगर कभी हमारा घर में झगड़ा होता है तो हम देर करते हैं क्षमा करने के लिए, मगर अभी ये कलीसिया में आके मैं धीरज के साथ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जैसा धीरज रखता है वैसा मेरे को नष्ट करने के लिए नहीं, मन फिराव का अवसर नहीं करने को बोलता है, मगर मेरा नाश नहीं होने के लिए परमेश्वर मुझे क्षमा करने के लिए बोलता है। मुझे धीरज रखना है, सबर का फल मीठा होता है धीरज रखे। भजन संहिता का 18 वचन का 20, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। परमेश्वर ने मेरा न्याय किया और उसने मेरे को प्रतिफल दिया है। आज मैं बहुत खुश है। मैंने प्रे किया परमेश्वर से मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा शादी करके मैंने घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं टेस्टमनी देती है। और 3.5 बरस वो बाहर रह गया। बाद में मैंने ही उसको बुलाया मेरे घर में क्षमा करके। और एक यहूना का 6 वचन मिला, 37 का यहूना 6, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। परमेश्वर ने जैसा हन्ना का रोना सुना, जैसा परमेश्वर ने आज मेरा रोना सुना। मेरे बेटे के लिए मैं रोती थी कि मेरे बेटे को बुराई से निकल, उसको एक बच्चा दे, फिर वो बदल जाएगा। आज परमेश्वर ने मेरा रोना जाना। और ऐसे परमेश्वर बोलता है, यशया का 66 वचन में 9 में लिखा है, यहोवा कहता है क्या मैं उससे जलमाने के समय तक पहुंचा कर न जलमा हूँ। तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं गोक बंद करूँ। मैं बहुत रोती थी ये वचन के लिए, रोज मेरे बेटी के लिए, बेटे के लिए। मगर आज परमेश्वर ने मेरा रोना सुना और परमेश्वर ने असंभव का संभव में बदल दिया। मैं बहू को लेके गया डॉक्टर के पास 2 बरस के बाद और डॉक्टर ने बोला बच्चा होने वाला नहीं, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो ये वचन में मैं बहुत रो रो के, कभी कभी मेरे को ये वचन याद आती थी, बहुत रोती थी। मगर आज परमेश्वर कितना विश्वास रखने से हमसे कितना प्यार करता है, उसको महिमा देने के लिए मैं आज उधर खड़े है कि असंभव से संभव करने वाला परमेश्वर ही है। आज विश्वास के बारे में मैं कहती है। एक वचन मेरे को इब्रानियों का 11:6 में ब्रदर डैनी ने बोला, ये वचन मैंने भी लिखा था, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज मेरे को प्रतिफल मिला है और मैं मेरे जीवन में बहुत हैप्पी है। ये कलीसिया में आके मैं सीख गई बाइबल पढ़ने को, विश्वास रखने को परमेश्वर के बिना देख के। मगर मेरे दुश्मन जो है मेरे से बोलता है, क्यों उधर ये चर्च में जाता है? मगर मैं बोला, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, उधर मैं जाती है, उससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती। सब ब्रदर एंड सिस्टर ने मेरे बेटे के लिए बहुत प्रे किया, उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ।